अध्याय 13 श्लोक संख्या 21 अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना केस नंबर 435 बोलिए। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सबदास बोली कार्य कार्य कारण तथा कारण का कर्तृत्व सृजन के मामले में हेतु कारण प्रकृति ही प्रकृति उच्यते कही जाती है पुरुषः जीवात्मा सुख सुख दुखानां तथा दुख का भोक्तृत्व भोग में हेतु कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद प्रकृति सब लोग बोलिए प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। या धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए मेरे साथ बोलिए ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। ये जो प्रकृति है ये कार्य और कारण दो चीजें उत्पन्न करती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्व कार्य और कारण मतलब शरीर और इंद्रियां। कार्य का मतलब शरीर और कारण का मतलब इंद्रियां। इनको उत्पन्न करने में हेतु क्या है प्रकृति। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं क्या शरीर और इंद्रियां। पुरुषा सुख दुखा नाम भोग कृत्व हेतु रुचिते। जो पुरुष है यानी जीवात्मा है वो सुख दुख को भोगने में कारण है। जीवात्मा खाली सुख दुख भोगने वाला है और कुछ नहीं कर रहा है ना। ये भगवान बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। शरीर और इंद्रियां। इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है शरीर को है? इस श्लोक में भगवान ने शरीर को क्या कहा है? इस श्लोक में क्या शब्द है शरीर के लिए? कार्य। शरीर के लिए कार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। और इंद्रियों के लिए कारण है ना। तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं शरीर और इंद्रियां विभिन्न प्रकार की हैं। ये प्रकृति के कारण है। क्या मतलब प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के शरीर बनाए हैं। सिर्फ प्रकृति ने बनाए हैं है ना। जीवात्मा तो केवल भोगता है अलग अलग शरीरों में जाता है और भोगता है। जीवात्मा थोड़ी बनाता है शरीर। प्रकृति बनाती है शरीर। इंद्रियां भी प्रकृति बनाती है। जीवात्मा तो केवल भोगता है ना। इंद्रियां विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे मनुष्य की इंद्रियां हैं तो ये दूसरे प्रकार की हैं। सूअर की इंद्रियां दूसरे प्रकार की हैं। मनुष्य की इंद्रियां जो है उनको जो है जो चीजें अच्छी लगती हैं जैसे हलवा है पूरी है मनुष्य की इंद्रियों को अच्छी लगती हैं। और सूअर को वो कूड़ा करकट मालूम पड़ता है। आपको रसगुल्ला जो है ना गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, स्वर को वो लगता है क्या कूड़ा करकट है। आपको मलमूत्र बहुत बुरा लगता है तो स्वर को मलमूत्र लगता है बहुत अच्छा है ना। तो क्या है, इंद्रियां अलग है, ऊंट की इंद्रियां अलग है, उसको कांटा अच्छा लगता है, आप कांटा खाओगे खून ही खून आएगा, और ऊंट है वो कांटे खाता है ना, उसकी इंद्रियां दूसरे प्रकार की है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं और विभिन्न प्रकार के शरीर हैं। देखो कितना अंतर है, चींटी है, चींटी का शरीर कितना छोटा है, हाथी का शरीर कितना बड़ा है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं, और ये सब उत्पन्न कौन कर रहा है, प्रकृति, जीव नहीं कर रहा। जीव अपने को मिथ्या अहंकार के कारण कर्ता समझता है, जीव अपने को कर्ता समझता है कि नहीं मैं करता हूं, मैं करता हूं मतलब अपने को शरीर और इंद्रिया समझता है, अपनी पहचान अपने शरीर और इंद्रियों के रूप में कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं। भगवान ने कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है केवल भोग रहा है इन शरीर और इंद्रियों को, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वो शरीर और इंद्रियां ये अलग हैं जीव से। शरीर और इंद्रियां प्रकृति उत्पन्न करती है ना, और कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में विभिन्न प्रकार की इंद्रियां प्राप्त होती हैं जीव को। तो फिर जीव अपने को कर्ता क्यों समझ रहा है, कर्ता का मतलब कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, बिल्कुल गलत है। वो सोच रहा अब ये इंद्रियां हैं जब काम नहीं करती हैं तो सोचता है कि मैं बहरा हूं, मान लो कान है काम नहीं कर रहे हैं तो सोचता है मैं बहरा हूं, है ना, है कि नहीं। आंखें हैं काम नहीं करती हैं तो सोचता है मैं अंधा हूं, है ना। लेकिन वास्तव में ये तो कान की इंद्रियां हैं, आंख की इंद्रियां हैं देखने की है? जो कि बदल रही हैं, है ना। तो अपने को कभी लंगड़ा समझता है, मैं लंगड़ा हूं, लेकिन नहीं, जीव जो है ना अलग है और इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है। तो ये भगवान बता रहे हैं। आगे प्रॉपर लिखते हैं, कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। हाँ, कार्य, कार्य की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं, क्या 84 लाख प्रकार के कार्य हैं, मतलब शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। तो विभाजन है 84 लाख का, कैसे, पानी में 9 लाख प्रकार के शरीर हैं, और पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के, और कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं, और पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं, और पशु 30 लाख प्रकार के हैं, और मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। तो कुल मिला के 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और ऐसा प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। आगे, जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जिस प्रकार ये शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। हाँ, तो कई विभिन्न प्रकार के जो है ना जो जीव चेष्टा करता है सुख भोगने की, उसके अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है ना। जैसे किसी को कुत्ते का शरीर मिलता है ना, तो वो कुछ इस प्रकार से भोगने की चेष्टा कर रहा है अपनी इंद्रियों को, किसको कुत्ते का शरीर मिल जाता है ना, किसी को शेर का शरीर मिल जाता है, क्यों मिलता है, मांस खाना चाहता है, ठीक है। तो मांस खाना चाहता है तो उसको उबालना पड़ता है, चाकू से काटना पड़ता है ना। तो प्रकृति क्या कहती है, कह रही इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो, चाकू से काटना पड़ रहा है, मांस को उबालना पड़ता है, तुमको ऐसा शरीर मैं देती हूँ कि तुमको उसमें ही शरीर में ही तुमको चाकू मिल जाएगा काटने के लिए, और उसी में ही जो है ना आप बिना मांस को पकाए आप खा सकते हो, पचा सकते हो, है ना। तो शेर और चीते का शरीर मिल जाता है ना, तो उसके शरीर में ही चाकू रहता है। चाकू जैसे दांत रहते हैं जिनसे मांस काटता है, है ना। मनुष्य के शरीर में दांत ऐसे नहीं है कि मांस को काट सके, लेकिन चीते के शरीर में वो ऐसे मांस होते हैं जिनसे वो मांस काट सकता है और खून पी सकता है ना। शेर है तो वो किसी भी पशु को मारता है तो उसका मांस काट काट कर खा जाता है और खून भी पी जाता है ना। लेकिन मनुष्य के शरीर में वो योग्यता नहीं है कि वो ऐसे खून चूस सके और मांस काट सके, वो सब योग्यता नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति है वो विभिन्न प्रकार के शरीर देती है। किसी को सूअर का शरीर मिलता है, क्यों मिलता है, जितना गंदा संदा है सब खाते रहते हैं, है ना। तो प्रकृति कहती है कि तुमको ऐसा शरीर देंगे जिसमें तुमको वही वही खाने को मिलेगा और कुछ नहीं, गंदा गंदा खाने को मिलेगा। तो वो सूअर का शरीर प्रकृति देती है। तो यहाँ रूपा लिखते हैं जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। तो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। हाँ, यहाँ प्रभु कह रहे हैं जो भौतिक सुख दुख हैं ये शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, उससे नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। वो तो सुख दुखों को भोग रहा है, सुख दुखों को भोगने के लिए बाध्य है, मजबूर है जी। जब उसने एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त किया है तो उसे सुख दुख उसके भोगने ही पड़ेंगे। अब वो भाग नहीं सकता है उनसे, है ना। ये नहीं है कि सुख दुख जो है ना वो बदल दे अपने, जैसा शरीर प्राप्त किया है उस प्रकार के सुख दुख उसे भोगने ही पड़ेंगे। तो कृपा लिखते हैं उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। हाँ, मतलब भोगने की जो इच्छा है जीव के अंदर, उसके कारण ही उसको भौतिक प्रकृति ये विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान कर रही है। मूल अवस्था में क्या होता है, जीव भोगता नहीं है, क्या है, भगवान की प्रकृति है, जीव भी भगवान की प्रकृति है। किसी अध्याय में, गीता में, किसी अध्याय में भगवान ने कहा है कि जीव भगवान की प्रकृति है, सातवें अध्याय में, सातवें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जीव ही भगवान की प्रकृति है। इस श्लोक में भगवान प्रकृति कह रहे हैं, उसको भगवान ने सातवें अध्याय में कुछ और भी नाम दिया है, उस प्रकृति का कुछ और भी नाम दिया है, क्या नाम दिया है सातवें अध्याय में। यहाँ प्रकृति और पुरुष की बात जो भगवान कर रहे हैं, हाँ, तो जो जहाँ इस श्लोक में भगवान जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं उसको सातवें अध्याय में भगवान ने कहा है अपरा प्रकृति, और इस अध्याय में जिसको पुरुष भगवान कह रहे हैं उसको भगवान ने सातवें अध्याय में कहा है परा प्रकृति। दोनों भगवान की प्रकृतियां हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही भगवान की भोग्या हैं, जीव भी भगवान के द्वारा भोग्य है, वास्तव में पुरुष नहीं है। लेकिन यहां पर भगवान पुरुष कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पुरुष बनने की इच्छा करता है प्रकृति पुरुष बनने की इच्छा करता है, यानी भोक्ता बनने की कोशिश करता है, भोक्ता बनना चाहता है, ना। तो स्वाभाविक स्थिति नहीं है जीव की कि वो भोगे, जब भोगने की इच्छा करता है तो फिर उसको जो है बंधना पड़ता है। तो प्रभुपाल लिखते हैं वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, क्या, वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु क्या है जो नहीं होती, भोगने की इच्छा, भोक्तापन, भोक्तापन नहीं होता है ना। प्रत्येक चीज जो है ना भगवान के आनंद के लिए है। वैकुंठ में प्रत्येक जीव जो है भगवान के आनंद के लिए होता है और उसी से उसको आनंद प्राप्त होता है। प्रभुपाद लिखते हैं वैकुंठ लोक शुद्ध है किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। हाँ, तो यहाँ पर कार्य और कारण जो भगवान ने कहा है ना, तो कारण मतलब इंद्रियां और कार्य माने शरीर। तो ये शरीर जो है इंद्रियों का ही कार्य है, इंद्रियों का ही परिणाम है। हाँ, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बस वरदान या शाप मिलता है। तो जो विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं जीव को दो कारणों से, एक तो उसके कर्मों के अनुसार, दूसरी उसकी इच्छाओं के अनुसार। दो कारण है। तो बात क्या कहते हैं, अगला शरीर जो प्राप्त होता है एक तो आपके कर्मों के अनुसार, दूसरा आपकी इच्छाओं के अनुसार। प्रकृति शरीर प्रदान करती है आपको, आपके कर्म कैसे हैं उन पर विचार किया जाता है और आपकी इच्छा कैसी है उस पर भी विचार किया जाता है। दोनों आगे जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। तो जीव की इच्छा होती है स्वर्ग पाने की, वो पुण्य कर्म करता है स्वर्ग पाने के लिए। भगवान कहते हैं ना नवे अध्याय में, त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ निष्वा स्वर्गतम प्रार्थयन्ते। वो स्वर्ग पाने की इच्छा करता है, फिर उसको अगर वो कर्म भी करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग पाने की इच्छा करता है कर्म कर रहा है उल्टे, है ना, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, नहीं होगी ना। तो कर्म और इच्छा दोनों होनी चाहिए। उसकी इच्छा भी है स्वर्ग पाने की और स्वर्ग पाने के लिए वो कर्म भी कर रहा है उस प्रकार से, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर उसके कर्म ऐसे नहीं है और उसकी इच्छा है स्वर्ग पाने की, तो उसको जो है उसके कर्म के अनुसार उसको कुत्ते का शरीर मिल सकता है। और उसकी इच्छा थी स्वर्ग पाने की, तो कुत्ते के शरीर में ही वो स्वर्ग मान लेगा। यही प्रकृति यही करेगी और क्या करेगी। स्वर्ग पाने की योग्य तो आप है नहीं, आपको कुत्ते का शरीर मिला है, लेकिन प्रकृति ऐसा अज्ञान पैदा करेगी कि आप कहोगे कि हाँ ये कुत्ते के शरीर में ही स्वर्ग है, है ना। तो ये चीज है, इच्छाओं कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। फिर गोपाल लिखते हैं जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। यहाँ सुख दुख का कारण मतलब भोगने के लिए बाध्य होता है। यहाँ प्रभु जी ये कह रहे हैं जाने ऐसे शरीर में जाने के लिए बाध्य होता है। यहाँ कारण का मतलब ये मतलब कि विवश है शरीर, एक शरीर छोड़ दिया, अब वो बिल्कुल विवश है, अब उसके बस में नहीं है कि वो जो है अपने स्थान को बदले, नहीं। आप प्रकृति जो है ना निश्चित कर दिया, जब तक शरीर नहीं छोटा है तब तक हाँ आप अपने कुछ कर्म बदल सकते हैं, अपनी इच्छाएं बदल सकते हैं और अपनी गति को बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने शरीर छोड़ा, अब प्रकृति के बस में हो गया, आपके जो कर्म और इच्छाएं हैं उसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और आपका अब अगला शरीर जो है निश्चित हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ले जाया जाएगा। जैसे कि गलती से हो या अपनी इच्छा से आप लखनऊ की गाड़ी में बैठ गए तो आपको लखनऊ जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। या हवाई जहाज में बैठ गए, हवाई उड़ गया, अब आप नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो वहां नहीं जाना है, वहां जाना है, वापस जाना है। अब हवाई जहाज आपको वहां पहुंचाएगा, जहां अमेरिका में जहां भी जाना था वहीं पर पहुंचाएगा। अब बीच रास्ते में आप नहीं कह सकते मुझे उतार दो, हवाई जहाज वापस आ जाए, अब नहीं हो सकता। आप बैठ गए, हवाई जहाज उड़ गया, बस अब आप बंधे हैं, विवश हैं, है कि नहीं? तो जब तक मनुष्य शरीर है आप जो है कुछ कर सकते हैं, है ना। शक्नोती है व्याह सोढ़ प्राग शरीर पे मोक्षना, जब तक शरीर नहीं छूटा है तब तक अगर कोई व्यक्ति जो है काम क्रोध से उत्पन्न वेग को अगर सहन कर सकता है, है ना, तो भगवान कहते हैं काम क्रोधो भूमिगम से युक्त आशा, तो वो योगी हो सकता है, सुखी बन सकता है। तो जब तक शरीर नहीं छूटा है तब तक आप अपनी कुछ गति को बदल सकते हैं, अपनी गति निश्चित कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपको कैसा शरीर पाना है। लेकिन शरीर छोड़ दिया, अब अगर तो कर्म के अनुसार कुत्ते का शरीर मिलना है तो कुत्ते के शरीर में जाना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि भरत महाराज कुछ गलती कर दी उन्होंने, पता है क्या गलती कर दी, हरण में आसक्त हो गए, एक हरण के बच्चे में आसक्त हो गए और यही सोचा कि मैं ठीक कर रहा हूं, जबकि ठीक नहीं कर रहे थे, भगवान की भक्ति छोड़ करके हरण की सेवा में लग गए। उन्होंने सोचा महात्माओं का यही लक्षण होता है, वे परोपकार में मतलब अपनी जो अपना स्वार्थ है वो सब भुला देते हैं परोपकार में, है ना। तो भजन को छोड़ करके वो हरण की सेवा में लग गए। अब जब हरण का शरीर मिल गया उनको, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा पश्चाताप के, पछताने की सिवा और कुछ भी अब वो नहीं कर सकते हैं। अब उनको याद आ रहा था बार बार कि मैंने बड़ी गलती की, मैंने बड़ी गलती की, मुझे हरण का शरीर मिल गया, या तो शरीर मिल गया, अब आपको जो है रहना पड़ेगा हरण के शरीर में। अब नहीं कह सकते नहीं नहीं अब मुझे जो है ना वो शरीर छोड़ना है, नहीं। अगर ऐसे शरीर छोड़ते हैं अपना, मान लो आत्महत्या करते हैं कि नहीं नहीं मुझको जो है ना ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो और अच्छा शरीर चाहिए, राजा का शरीर चाहिए, ये शरीर बहुत खराब है, बहुत बीमारी है शरीर में, इस शरीर को मैं नष्ट कर दूं और मुझको अच्छा शरीर मिल जाएगा। कोई व्यक्ति भी सोचता है कि शरीर को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि तो इसमें बहुत तकलीफ मिल रही है, मानसिक दुख मिल रहे हैं, सब लोग जो है ना तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या कई प्रकार की बीमारियां लगी हैं, इस शरीर को खत्म कर दो, अच्छा शरीर जो है ना प्राप्त करूंगा मैं, तो क्या होगा। कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है इस प्रकार से तो उसको और भी ज्यादा कष्ट दिए जाते हैं, और भी ज्यादा कष्ट दिए जाते हैं। तो जो है ना प्रकृति ऐसी नहीं है कि आप जो है ना जैसा शरीर चाहें वैसा शरीर आपको दे दिया जाए और बीच में आपको जो है आपका शरीर बदला जाए, ये हो नहीं सकता। जो भी शरीर है, जो भी इंद्रियां हैं, जो मिल गया तो उसको अब भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो भरत महाराज को इंतजार करना पड़ा, हरण के जीवन में जितनी आयु थी उसको बिताना पड़ा, और हरण के शरीर में अबे मंत्र पाठ नहीं कर सके थे, उनको याद आता था, मंत्र याद आते हैं, ये मंत्र पाठ नहीं कर सकते थे हरण के शरीर में, भोग नहीं पड़ा हरण का शरीर, है ना। तो इस तरह से वो जीव है वो विवश होता है। आगे कृपा लिखते हैं, एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो है वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। क्या जैसे कुत्ता है कुछ भी बोलना चाहे, अब कुत्ते से आप कहो कि बोल हरे कृष्णा, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, भौं भौं भौं, वो बदल नहीं सकता अपनी आवाज, है कि नहीं। जैसे मेढक है, उससे कहो कि बोल हरे कृष्णा, तो वो क्या बोलेगा, टर्र टर्र टर्र। अब वो बदल नहीं सकता, है कि नहीं। बिल्ली से कहो बोल हरे कृष्णा, तो क्या बोलेगी, म्याऊं म्याऊं। तो इस तरह से मतलब वो शरीर से बंधा हुआ है, अगर वो चाहे भी कुछ आचरण करना, चेष्टा करना, तो कर नहीं सकता है। कुत्ता बोल सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बंधा हुआ है शरीर से, है कि नहीं। तो जो मनुष्य के शरीर में जो सुविधा है भजन करने की, वो नहीं हो पाती इस तरह से, है कि नहीं। जैसे तोते का शरीर है, तोते के शरीर में हरे कृष्णा अगर आप कहो तो बोल सकता है तोते के शरीर में, लेकिन तोते के शरीर में भी भजन नहीं होता। तो हरे कृष्णा वो रट सकता है, लेकिन वो भजन नहीं कर सकता। भजन का मतलब जानते कैसे, भोजन हो या ना हो, भजन भजन एक ऐसी चीज होती है कि भोजन से भी ज्यादा है। या उसके सामने मान लो बिल्ली आ जाए तो फिर वो टें 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 करेगा, फिर वो नहीं हरे कृष्णा बोल सकता है तोता, है ना। तो तोते के शरीर में भी भजन नहीं होता है, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना भजन के लिए नहीं है। मनुष्य का शरीर जो भजन के लिए मिला है, अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो उसको फिर मनुष्य का शरीर नहीं दिया जाता है। और हो सकता है हजारों लाखों लाखों जन्मों तक उसे मनुष्य का शरीर दोबारा ना प्राप्त हो, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3:1:1 इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है, द्वास पर्णा सविजा सखाया। क्या मतलब, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, क्या मतलब। द्वा का मतलब दो और सुपर्णा का मतलब पक्षी, सयुजा सयुजा मैंने साथ साथ, सखाया मित्र हैं। दो पक्षी साथ साथ मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं और मित्र हैं। एक ही वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। अगर इस शरीर को वृक्ष मान लिया जाए तो इस शरीर में दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, है ना। तो दो पक्षी हैं। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है, है ना। तो वो जो परमात्मा है वो सुख दुख को नहीं भोगते। इस शरीर को अगर वृक्ष माना जाए तो इसमें दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा जो पक्षी है ये इस वृक्ष के फलों को खाता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल हैं, मीठे फल और कड़वे फल। मीठे फल मतलब सुख और कड़वे फल का मतलब दुख। तो जीवात्मा रूपी जो पक्षी है इस सब जितने भी फल इसमें पैदा होते हैं सब उसको खाने पड़ते हैं, मीठे और कड़वे सब प्रकार के फल। और जो परमात्मा है वो ऐसे पक्षी हैं जो इसके साथ रहते हैं, इस पक्षी के साथ, लेकिन वे इसके मीठे और कड़वे फल वो नहीं खाते हैं, वो नहीं भोगते हैं। परमात्मा साक्षी के समान रहते हैं, हृदय में वो साक्षी के जैसे रहते हैं। एक श्लोक है इसमें आगे आएगा, उपद्रष्टानुमंता चा, ये 23वां श्लोक है। आगे 23वां श्लोक आएगा जिसमें कि जो दूसरा पक्षी है उसको भगवान क्या बताते हैं, उपद्रष्टा। उसको भगवान कहते हैं उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब उपद्रष्टा, ओवरसियर, ओवरसियर उप माने ऊपर, दृष्टमन देखने वाला। तो जो परमात्मा है वो ओवरसियर हैं, जीव के ओवरसियर हैं, उपद्रष्टा हैं, ऊपर से देखने वाले उपदृष्टा अनुमंता, अनुमंता है, अनुमंता मतलब परमीटर। अनुमंता, अनुमंता का मतलब जो अनुमति देने वाले हैं। जीव भोगने की इच्छा करता है, मैं ये इस प्रकार भोगू, इस प्रकार भोगू, ठीक है भोगो। उसके अनुसार उसको जो जो भी योनियां प्राप्त होती हैं, कुत्ते की, स्वर की, चींटी की, गिरगिट की, परमात्मा उसके साथ रहते हैं हा? और अनुमति देते हैं कि ठीक है। परमात्मा में इतना धैर्य है कि जीवात्मा गहरे छाओं में साथ दे रहे हैं अनुमंता। और फिर भरता, भरता का मतलब भरण करने वाले। प्रत्येक जीव को भोजन परमात्मा ही दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं प्रत्येक जीव की। तेईसवां श्लोक है 23। भरता है ना, भोजन पहुंचाने वाले। फिर भोक्ता, असली भोक्ता वही है परमात्मा है। जीव असली भोक्ता नहीं है ना, परम भोक्ता भगवान है। उपभोक्ता जीव को कह सकते हैं। उपभोक्ता का मतलब कि भगवान को सुखी करने से फिर उसको सुख प्राप्त होता है, जैसे उपभोक्ता है। परम भोक्ता भगवान है। फिर महेश्वर, भगवान महेश्वर है, सब लोगों के महेश्वर है, सर्व लोक महेश्वरम। भोक्ता महेश्वर यानी भोक्ता आरम्भ के तपसा, और महेश्वर सर्वलोक महेश्वरम है ना। फिर परमात्मा, इति परमात्मा सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सब कहने में बात करते हैं परमात्मा। तो भोक्ता महेश्वर परमात्मा हा? मतलब वही है जो पांचवें अध्याय के अंत में स्वर्ग भगवान ने कहा है। परमात्मा मतलब सब जीवों के सुहृद, महेश्वर का मतलब सर्वलोक महेश्वर, और भोक्ता का मतलब भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या के भोगने वाले। देहेस्मिन पुरुषा पर, जो परम पुरुष हैं इस देह में, उनको इन नामों से कहा जाता है। ये नाम जीव को नहीं दिए जा सकते। कौन कौन से नाम? उपद्रष्टा जीव नहीं हो सकता, अनुमंता जीव नहीं हो सकता, भरता जीव नहीं है, भोक्ता जीव नहीं है, महेश्वर जीव नहीं है, परमात्मा जीव नहीं है। ये सब नाम जो है परमात्मा के लिए है, जीव के लिए नहीं है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिखते हैं कि परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है ना, परमात्मा रूप में। तो जीव को परमात्मा नहीं कह सकते आप। जो लोग कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा है ना, घोर अज्ञान है, ये सब मायावादी है। तो जो वैष्णव आचार्य हैं तो वे इस प्रकार की व्याख्या कभी नहीं करते हैं कि जीव और परमात्मा को बराबर कह दें या एक कह दें, कि बहुत बड़ा अज्ञान है। कोई प्रश्न है किसी का? इनका अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कीर्तन भजन और जाप में क्या अंतर है। देखिए कीर्तन का मतलब है, कीर्ति से बना है कीर्तन, कीर्तन बना किससे? कीर्ति से, कीर्ति या गुणगान, यस है ना। तो कीर्तन का मतलब है कि भगवान की कीर्ति को फैलाना है, भगवान का गुणगान करना, लोगों में भगवान की महिमा का प्रचार करना कीर्तन कहलाता है। जैसे मैं जो प्रवचन कर रहा हूं ये भी कीर्तन है, ठीक है ना, कीर्तन। तो कीर्तन में जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब आते हैं जिनको समझाया जाता है। नाम कीर्तन भी होता है भगवान का है ना, और भगवान के रूप का कीर्तन होता है, रूप का वर्णन होता है, गुणों का वर्णन होता है और लीलाओं का वर्णन होता है, ये सब कीर्तन है ना। नवे अध्याय में निकालिए सत्तम कीर्तन, तो वहां 14वां श्लोक है क्या नवे अध्याय का? श्लोक संख्या 14, हाँ श्लोक संख्या 14, नवे अध्याय का श्लोक संख्या 14, इसमें कीर्तन के बारे में कुछ कहा है प्रभुपाद ने? हाँ, देखिए, सततम कीर्तयन्तो माम, ना ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, ये ठीक है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, महात्मा, ये तात्पर्य में महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। ठीक है, कीर्तन का मतलब कृष्ण के गुणों का कीर्तन, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। ठीक है, गुणगान। फिर जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनके असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। आप समझ रहे हैं? तो ये कीर्तन कहलाता है ना। वैसे कीर्तन के अगर व्यापक अर्थ देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ मतलब चीजें आ जाती हैं कीर्तन में। आप समझो, भगवान के कीर्तन में बहुत चीजें आ जाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने ये पुस्तकें छापी हैं, ये जो पुस्तकें छापी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, ये भी कीर्तन है। क्यों? क्योंकि भगवान की कीर्ति बढ़ाने के लिए ही ये पुस्तकें छापी हैं, है ना। इन पुस्तकों को पढ़ करके लोगों को भगवान की कीर्ति पता चलती है, भगवान का महत्व पता चलता है कि भगवान कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कितने महान हैं। तो क्या है, ये कीर्तन है, है ना। सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत 7 दिन लगातार सुनाते रहे तो वो कीर्तन के आचार्य हैं, आप समझे ना। और जो है ना, नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ये तो कीर्तन है ही, आप समझे ना। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का कीर्तन है। इसमें श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के चारों का वर्णन है। तो ये श्रीमद् भागवत भगवान का नाम कीर्तन भी इसमें है और भगवान का रूप कीर्तन भी है। रूप का भी बहुत वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और गुण कीर्तन भी है और लीला कीर्तन भी है श्रीमद् भागवत। भगवद गीता भी भगवान का कीर्तन है, ऐसा भगवान का नाम कीर्तन है और भगवान के रूप का भी कीर्तन है, कैसे भगवान का रूप है, भगवान के गुणों का कीर्तन है, इसमें लीलाएं नहीं है। तो ये भी कीर्तन है, आप समझे। प्रभुपाद जी ने जो है भगवान के इतने जो मंदिर बनाए हैं, इतने मंदिर बनाए हैं, तो ये भगवान का कीर्तन अगर देखें एक व्यापक स्तर पर देखें तो कीर्तन में बहुत चीजें आ जाती हैं। प्रभुपाद ने जो है जो इतने मंदिर बना दिए हैं और मंदिर बनते जा रहे हैं, तो ये भगवान का कीर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं कि भगवान की कैसी सेवा हो रही है, भगवान का कैसा श्रृंगार हो रहा है, भगवान की कैसी पूजा हो रही है, तो इससे लोगों को भगवान की कीर्ति पता चलती है, है ना। तो ये भगवान का कीर्तन है, आप समझे ना। तो कीर्तन में समझ रहे, पुस्तकें छापना भी भगवान का कीर्तन है, प्रेस चलाना भी भगवान का कीर्तन है, जहाँ पुस्तकें जो है छपती हैं। प्रेस को भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बृहद मृदंग बताया, बृहद मृदंग, ठकर ठक ठक, ठकर ठक ठक, ठकर ठक ठक, है ना, बृहद मृदंग। जैसे आप ये छोटा सा मृदंग है, इसको आप कहेंगे लघु मृदंग, छोटा मृदंग है, धिक्तान 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 ये जो करता है, ये छोटा मृदंग है ना। तो ये भी भगवान का कीर्तन है, ये छोटा सा मृदंग है, धिक्तान धिक्तान जो बोलता है, हाँ, तो क्या करता है, धिक्कार है उनको, धिक माने धिक्कार है, तान माने उनको, किनको, जो भगवान का कीर्तन नहीं करते उनको धिक्कार है। तो छोटा सा मृदंग भी निंदा करता है। तो अगर जब निंदा करते हैं जो भगवान से विमुख है, तो ये भगवान का कीर्तन है। जब आप उनको धिक्कारते हैं, निंदा करते हैं, निंदकों की निंदा करते हैं, तो ये भी भगवान का कीर्तन है। दो प्रकार से भगवान का कीर्तन होता है, भक्तों की प्रशंसा करना, भगवान की प्रशंसा करना, ये भी कीर्तन है। और भक्तों की निंदा करना है ना, तो ये भी भगवान का कीर्तन है। जो निंदा करते हैं उनकी निंदा करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं। तो जो निंदा करते हैं भगवान की, भक्तों की, उनकी भी निंदा जब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो भी भगवान का कीर्तन हो जाता है ना। इसलिए गीता में उनकी निंदा भी की गई है जो भगवान से विमुख है, मूढ़ा नराधमा है ना, आसुर आसुरी भावासता, तो इस प्रकार से जो निंदा की जा रही है तो भी भगवान का कीर्तन है ना। तो कीर्तन के अंदर बहुत चीजें आ जाती हैं। और फिर आपने क्या पूछा, भजन। भजन क्या होता है, भजन क्या होता है, भजन होता है जब हम एकांत में जो है अपनी साधना करें, कुछ नियमों का पालन करें तो भजन होता है, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में कोई व्यक्ति जो है कुछ तपस्या उठाता है, कुछ नियमों का पालन करता है, उसे तकलीफ होती है लेकिन वो उन नियमों का पालन कर रहा है तो भजन क्रिया कहलाते हैं। कीर्तन में हम जो है दूसरों को कुछ सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो कीर्तन कहलाता है। दूसरों के बीच में हम जब भगवान का कुछ विशेष महात्म्य प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, तो वो कीर्तन कहलाता है ना। कीर्तन में वो भी है जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, डायरोमा वगैरह उस समय चलते थे, तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैतन्य लीला और कृष्ण लीला के भी डायरोमा बनाए। और अभी जो है ना प्रभुपाद की इच्छा से हमारे यहाँ भी ये भी कीर्तन है, एनिमेट्रॉनिक्स और जो म्यूजियम और भगवद गीता अनुभूति, ये तीन प्रकार के जो शो चल रहे हैं ये भी भगवान का कीर्तन है ना। और भजन में जो है कोई व्यक्ति अपने भजन करता है ना, जब एकांत में अपने आप जो ना कुछ अगर भजन कर रहा है तो उसको भजन कहते हैं है ना। भजन में जो है प्रभुपाद जी कभी गोविंद जय जय गोपाल जय जय भी गाते थे लेकिन कीर्तन में नहीं गाया, कीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र है। जब दूसरों के साथ जब प्रभुपाद जी रहते हैं उनको सिखाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन करते हैं, लेकिन हारमोनियम में जब अपना बैठ करके गाते हैं तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय वो भी गाते हैं और भी वैष्णव भजन गाते हैं, वो अपने आनंद के लिए अपने रसास्वादन के लिए गाते हैं। तो वैष्णव भजन बहुत से हैं जिनमें वैष्णवों ने लिखे हैं और भगवान के प्रति जो है ना अपना कुछ है भाव प्रकट किया है ना, तो ये भजन कहलाता है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांत रहे भजाम में, हम मैं उनका भजन करता हूँ उसी प्रकार से है ना। भजते माम अनन्य भाग, जो मेरे अनन्य भाव के भजन करते हैं, तो भजन का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करना भी होता है। कीर्तन में लोगों से संबंध स्थापित करना होता है भगवान के लिए, और भजन में भगवान से संबंध स्थापित करना होता है। तो कीर्तन और भजन में ये भी अंतर हुआ। ये भजन थी तुम आम भक्त्या, भगवान के जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं है ना। तो भजन का मतलब है भगवान से संबंध जोड़ना, ये भी भजन का मतलब है, और नियमों का पालन करना भी भजन। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, आपके अनर्थ दूर होते हैं भजन क्रिया से, तो भजन है। अच्छा और क्या पूछा आपने, जाप। जो जाप है तो ये भी भजन का एक अंग है, जाप करना ठीक है ना। भजन क्रिया में कई प्रकार के नियम होते हैं जिसमें से माला जाप भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भजन का है ना। इसमें और भी कई चीजें हैं जैसे कि सवेरे उठना है, मंगल आरती करना है ना, और पूजा करना है, और क्लास में बैठना है, तो सब जो है ना भजन क्रिया के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ये 16 माला का जाप करना है ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के अगर धाम जाने की इच्छा है उसके कर्म नहीं है तो उसकी क्या गति होगी। देखिए कर्म और इच्छा का एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप ऐसे कर्म करोगे, जैसे कि आपकी इच्छा है मायापुर धाम जाने की, मायापुर धाम जाने की इच्छा है तो आप ऐसे कर्म करोगे कि कैसे परमिशन मिले, कैसे टिकट मिले, कैसे जाएं, आप जाओगे, है कि नहीं। आपकी इच्छा है तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं, है ना, जदा में बुद्धि हो कम तम, आपकी इच्छा है तो भगवान बुद्धि देंगे इस प्रकार से। लेकिन इच्छा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो माया है उसने इस प्रकार से आपकी ज्ञान को ढक दिया है कि आप इसी में ही मतलब सोच रहे हैं कि मुझे सुख मिल रहा है, मैं सुखी हूं। आप जाना नहीं चाहते, इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा है, है? तो वो जाना नहीं कह सकते कि आपकी भगवान के धाम में जाने की इच्छा है। भगवान के धाम में जाने की इच्छा आपकी हो नहीं सकती है जब तक आपकी इस भौतिक संसार में भोगने की इच्छा है। तो जो अनर्थ है जब तक आपके अंदर, तब तक आप भगवान के धाम में जाने की इच्छा कर ही नहीं सकते। भजन क्रिया से सबसे पहले अनर्थ आपके दूर होंगे, अनर्थ दूर होंगे फिर कहीं निष्ठा आएगी, फिर क्या होगी, रुचि आएगी, आप समझे, रुचि आएगी फिर आसक्ति होगी, है ना। तो ये इतना आसान थोड़ी है, अभी अनर्थ ही अगर दूर नहीं हुए तो इच्छा भगवान के धाम में जाने की कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। आसक्ति बहुत आगे, अनर्थ निवृत्ति पहले होनी चाहिए, इसलिए आपको भजन क्रिया में लगना पड़ेगा। तीव्र तीव्रेण भक्ति योगेन निजेते पुरुषम परम, तीव्र भक्तियों के द्वारा भगवान का भजन किया जाए, अनर्थ दूर होंगे तभी। अनर्थ का मतलब जिन चीजों का कोई अर्थ नहीं है वही आप इच्छा करते हो। हम लोग उन चीजों की इच्छा करते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, अनर्थ है वो, या हम उनको चाहते हैं। जब तक आप इस संसार में कोई भी इच्छा करते हो तब तक आपके भगवान के धाम में जाने की इच्छा कैसे होती है, हो सकती है, है ना। लेकिन हाँ, हम साधु संघ की इच्छा करते हैं, हम भगवान से इच्छा करते हैं कि अपने दास के दास के दास का दास बना लो। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे हेतु की, तो कि हम जो है जन्म जन्म में हमें आपकी हेतु की भक्ति प्राप्त हो। अगर भगवान के धाम में जाने की इच्छा नहीं है तो जन्म जन्म इस संसार में भी अगर रहने की इच्छा है तो भगवान के भक्त बनने का प्रयास करो। प्रचेता लोग जो है भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो भी वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी इच्छा है संसार में रहने की, यावत्ते माया स्पृष्टा, जब तक हम आपकी माया के प्रभाव में हैं और इस कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो हमारी इच्छा है अभी संसार में रहने की। देखो भगवान के सामने भी वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी इच्छा है संसार में रहने की तब तक हमें क्या हो, तावत भवत प्रसंगा नाम संगा से अनु भव्य हो, जन्म जन्म हमें आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, कि वो हमें याद दिलाते रहे हैं कि संसार रहने लायक नहीं है। तो हम भक्तों का संग क्यों पाने की इच्छा करते हैं, जिससे कि उनकी संगति में हमें जो है कम से कम दिशा तो दिखाई दे कि जीवन की असली दिशा क्या है। भोगने से जो है ना हमें सुख नहीं मिल सकता, तो हमें भक्तों का संग प्राप्त हो, हम क्यों इच्छा करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती है भगवान के धाम में जाने की। गोपियां इतनी पवित्र हैं कि उनकी इच्छा होती है भगवान के साथ रहने की, भगवान का दर्शन करने की। युगाय तम निमेश, एक पलक भी जो ना बंद होती है वो निमेश काल, वो युग के बराबर लगता है। इसको आप कह सकते हैं हाँ ये इच्छा है कुछ। आपको कुछ फर्क पड़ता है, मान लो आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं और पलक बंद हो गई तो आपको कुछ फर्क पड़ता है कि कुछ नुकसान हुआ? गेट बंद हो जाता है, पर्दा बंद हो जाता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये भी ठीक है। जय हो राधा पार्थारथी की, जय हो। प्रसन्न हो गए, चलो अब प्रसाद का टाइम हो गया, चलो अब सोने का टाइम हो गया, चलो कब दर्शन बंद हो तो हम उठे, अभी क्लास चल रहा है, दर्शन जब तक होगा तब तक तो क्लास भी चलेगा, तो बैठना ही पड़ेगा। तो कब दर्शन बंद हो, क्लास समाप्त हो तो हम जाएं, है ना। तो अभी हमारी इच्छा कहाँ है, लेकिन हाँ ठीक है, नित्यम भागवत रोज कम से कम क्लास सुन रहे हैं, ये भी तो बड़ी भगवान की कृपा है, है ना। रोज भगवान का दर्शन कर लेते हैं, ये भी तो भगवान की बड़ी कृपा है, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा देखना चाहिए। तत्नुकंपा सुसमीक्षे मारो, कि आपकी कृपा को हमेशा वो देखते हैं कि हाँ आपकी कितनी कृपा है। हमारी तो इच्छा नहीं थी उनको देखने की, और फिर भी वो अपनी कृपा से, हाँ ये कितनी उनकी कृपा है। हम ऐसे बेवकूफ जो उनको नहीं देखना चाहते, उनसे दूर रहना चाहते हैं, और वे कितने दयालु कि फिर भी हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। ये उनकी दया है, और उनकी केवल दया ही दया है, और कुछ नहीं, हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, हमारी ओर से कुछ भी प्रयास नहीं है, मूर्ख के मूर्ख हैं, और दूर ही दूर भागते हैं उनसे, और वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। आमी बिना बंधु के अच्छे तुम्हारा, वो भगवान दर्शन दे रहे हैं और कहते हैं हमारे बिना तुम्हारा कौन बंधु है, और कौन बंधु है तुम्हारा है? तो भी भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि मुड़ के देख मुझे, मुड़ के देख मुझे, और हम ऐसे बेवकूफ फिर भी दूर ही दूर भागते हैं, विमुख होते हैं उनके। हमारी कहाँ इच्छा है? भगवान की जो कमजोरी है वो उनकी कृपा ही है, और क्या। भगवान कमजोर हैं अपनी कृपा के कारण, इसलिए हमको दर्शन देते हैं। तो भगवान बहुत कृपालु, इस प्रकार से देखना चाहिए। सुदामा जी जब भगवान के पास नहीं जाना चाहते थे, उनकी पत्नी ने बहुत कहा, तो फिर विचार किया कि ठीक है, फिर कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, ये तो बड़ा लाभ होगा, कि कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे ये बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से जो है, मतलब हमें सोचना चाहिए। फिर सुदामा जी ने कृष्ण की कृपा का अनुभव किया, कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं। उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये भी कृष्ण की कितनी कृपा है, कि ये मूर्ख ब्राह्मण मुझे भूल जाएगा इसलिए कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो सुदाम आपने को ही पतित समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। तो ये जो है ना, हमें सोचना चाहिए, अगर हमारी इच्छा होती भगवान को देखने की, भगवान के साथ रहने की, तो हम आते क्यों हैं वहां से। हम आए इस संसार में गिरे क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। आप इतनी जल्दी इच्छा नहीं जाग सकती, इच्छा इतनी अशुद्ध है कि भौतिक संसार में बहुत तरह की इच्छाएं पैदा हो गई हैं। तो इस प्रकार से वो इच्छाएं समाप्त हों, भौतिक इच्छाएं समाप्त हों, फिर कहीं निष्ठा आए, फिर कहीं रुचि आए, फिर कहीं आसक्ति हो, फिर कहीं भाव हो, फिर कहीं प्रेम हो, है ना। ये कोई इच्छा थोड़ी है कि कोई कहे कि हाँ मैं जाकर के देखना चाहता हूँ भगवान को, मैं भगवान के धाम में जाना चाहता हूँ, मतलब अपनी मर्जी से अपना मनमाना आचरण करूंगा भगवान के धाम में जाकर के, और सब नियम बदल दूंगा वहां के, है ना, मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। कोई व्यक्ति इस प्रकार से इच्छा करता है तो वो इच्छा थोड़ी मानी जाती है, इस प्रकार से कोई समझ नहीं सकता है। इच्छा कैसे करेगा, जैसे कि हंस और बगुले की एक घटना है, तो जो हंस मान सरोवर की तरफ जा रहे हैं, तो जो बगुले हैं वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं हम मान सरोवर में जा रहे हैं। तो बोले मान सरोवर कैसा होता है, और वो बगुले क्या कहते हैं, एक गंदे तालाब में कीचड़ में जो है ना वो मछलियां खा रहे थे, तो वो कहते हैं कि वो यहाँ मानसरोवर में ऐसा कीचड़ मिलेगा जहाँ की हम मछलियां खा सकें। बोले नहीं नहीं, वहां तो बहुत साफ सुथरा है, वहां तो मोती मिलते हैं। तो बगुले कहते तो हम क्या करेंगे वहां जाकर के मानसरोवर। आप समझे ना, जैसे सुअर है, अब सुअर की इच्छा क्या हो सकती है कि अब वो हलवा पूड़ी खाए। वो कहता है कि उसको मलमूत्र जो है ना ये खाने को नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या जरूरत है कहीं भी रहने की, सब बेकार है, मलमूत्र चाहिए उसको। तो जब चेतना हमारी अशुद्ध है तो हम कैसे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। जैसे ही आप किसी को बताएंगे कि भाई भगवान के धाम में जो है प्रत्येक जीव भगवान की सेवा करता है और कुछ भी मतलब वहाँ इंद्रिय तृप्ति नहीं है, तो कहेगा अरे क्यों हम उसको नरक में भेज रहे हो, इंद्रिय तृप्ति नहीं है वहाँ, तो फिर क्या फायदा भगवान के धाम में जाने से। आप समझे, तो वो चीज हो ही नहीं सकती कि उसकी इच्छा हो। भगवान के धाम में तो बीड़ी सिगरेट की भी दुकानें नहीं है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कैसे मिलेगी, शराब पीने को कैसे मिलेगी, वेश्यावृत्ति है, बीड़ी सिगरेट है, ये सब कहाँ है, तो क्यों जाएं। जब शुद्ध चेतना होती है तो फिर हमारे में शुद्ध इच्छा होती है, भगवान के धाम में जाने की इच्छा होती है, क्योंकि वहां पर भगवान की सेवा होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की
जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
जय।
श्री राधा पाठ सारथी ललित विशाखा की
जय।
श्री श्री गौणताय भगवान की
जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय।
हरे कृष्णा।